नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का लोगों से आह्वान, दैनिक जीवन में अधिक से अधिक स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करें। कृषि एवं ग्राम विकास मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून में सिल्क एक्सपो का शुभारंभ किया। हरिद्वार जिले की ग्राम पंचायत धनौरी में ग्रामोत्थान री परियोजना के तहत चारा उत्पादन को लेकर महिला पशुपालकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न। और बागेश्वर के नुमाइस खेत मैदान में कुमाऊनी गायन शैली में आयोजित होने वाली रामलीला का इस बार नए अंदाज में मंचन हो रहा है। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वदेशी अपनाओ तथा जीएसटी की नई दरों के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए जन जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत आज देहरादून के कुआंवाला बाजार का भ्रमण किया। मुख्यमंत्री ने दुकानदारों और स्थानीय नागरिकों से बातचीत कर उन्हें स्वदेशी उत्पादों के उपयोग के लाभों और कर प्रणाली में हाल ही में लागू की गई नई दरों के संबंध में जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने लोगों का आह्वान किया कि वे दैनिक जीवन में अधिक से अधिक स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करें और विदेशी उत्पादों पर निर्भरता कम करें। उन्होंने कहा कि जन जागरूकता और लोगों की सक्रिय भागीदारी से ही स्वदेशी अपनाओ अभियान को व्यापक सफलता मिलेगी और राज्य की आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि जीएसटी दरों में कमी के कारण उपभोक्ताओं को वस्तुएं पहले से कम मूल्य पर उपलब्ध हो सकेंगी, जिससे आम जन को सीधा लाभ होगा।
तीन दिनों से लगातार मैं अलग अलग जो वस्तुएं बेचने वाले हैं उन अलग अलग प्रतिष्ठानों पर मैं गया हूं। सभी ने मुझे बताया है कि उनकी जो बिक्री है इस दौरान बहुत बढ़ गई है और ये सभी वस्तुएं जो सस्ती हुई हैं उससे एक तो लोगों की बचत होगी, ये बचत उत्सव भी है और साथ में बिक्री का भी, दुकानदारों की बिक्री भी बहुत बढ़ी है, लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत है और ये क्रांतिकारी निर्णय है। सभी लोग इसके लिए प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का धन्यवाद कर रहे हैं।
कृषि एवं ग्राम विकास मंत्री गणेश जोशी ने आज देहरादून में आयोजित सिल्क एक्सपो 2025 का शुभारंभ किया। उन्होंने एक्सपो में लगे स्टॉलों का अवलोकन भी किया। इस अवसर पर श्री जोशी ने कहा कि उत्तराखंड राज्य का शहतूती रेशम पूरे देश में सर्वोत्तम माना जाता है। वर्तमान में प्रदेश में लगभग 7,500 कीटपालक परिवारों द्वारा करीब 312 मीट्रिक टन शहतूती रेशम कोया का उत्पादन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि रेशम फेडरेशन द्वारा न सिर्फ परंपरागत बुनकरों को प्रशिक्षित किया गया है बल्कि सेलाकुई स्थित ग्रोथ सेंटर में 3 पावर लूम स्थापित कर गुणवत्ता युक्त वस्त्रों का उत्पादन भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि रेशम फेडरेशन का दून सिल्क ब्रांड अब राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना चुका है। गत वर्ष लगभग 5 करोड़ मूल्य के रेशमी वस्त्रों का उत्पादन कर फेडरेशन ने 1 करोड़ का लाभ अर्जित किया। इस दौरान मंत्री गणेश जोशी ने रेशम कीट पालन में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों को सम्मानित भी किया। सिल्क एक्सपो में देश के 12 राज्यों के 26 से अधिक प्रतिभागियों ने अपने अपने रेशमी उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई है, जहां उच्च गुणवत्ता के रेशमी वस्त्र, बुनाई की विविध विधाएं और डिजाइन ग्राहकों को एक ही छत के नीचे उपलब्ध हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश पदाधिकारियों, जिला प्रभारी, सह प्रभारी, जिला अध्यक्ष और जिला महामंत्रियों की प्रदेश संगठनात्मक कार्यशाला का आज देहरादून में राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष ने शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, पार्टी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम और सह प्रभारी रेखा वर्मा मौजूद रहे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि ये संगठन की पहली कार्यशाला है और अब संगठन का विस्तार बूथ स्तर तक किया जाएगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं को घर घर पहुंचाएं और 2027 में भाजपा की जीत सुनिश्चित करें। प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने कहा कि मिशन 2027 को लेकर भाजपा ने जमीनी स्तर पर काम करना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि पार्टी का लक्ष्य हर बूथ को सशक्त बनाना है।
ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज़ उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज़ उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
हरिद्वार जिले में रुड़की विकासखंड की ग्राम पंचायत धनौरी में ग्रामोत्थान रीप परियोजना के तहत दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आज संपन्न हो गया। आधुनिक तकनीक द्वारा चारा उत्पादन विषय आयोजित प्रशिक्षण में 22 पशुपालक महिलाओं ने भाग लिया। इस अवसर पर महिलाओं को चारा उत्पादन के महत्व, प्रमुख चारा फसलें जैसे नेपियर घास, मक्का, जौ, ज्वार और बरसीम तथा उनकी वैज्ञानिक खेती तकनीक पर विस्तार से जानकारी दी गई। इसके अलावा उन्हें भूमि की तैयारी, बीज चयन, बुआई, सिंचाई, निराई और संतुलित खाद उर्वरक के प्रयोग की व्यावहारिक जानकारी भी दी गई। प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण पशुपालकों को पौष्टिक व किफायती चारा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना था, जिससे पशुओं का स्वास्थ्य सुधरे और दूध उत्पादन में वृद्धि हो सके। ब्रिटिश काल से बागेश्वर के ऐतिहासिक नुमाइश खेत मैदान में कुमाऊनी गायन शैली में आयोजित होने वाली रामलीला इस बार नए अंदाज में मंचित हो रही है। परंपरागत रूप से केवल पुरुष कलाकारों द्वारा किए जाने वाले इस आयोजन में पहली बार बालिकाएं प्रमुख किरदार निभा रही हैं। रामलीला कमेटी के संरक्षक उमेश साह ने बताया कि बागेश्वर में रामलीला की शुरुआत का कोई लिखित प्रमाण उपलब्ध नहीं है, लेकिन पूर्वजों के अनुसार 1890 में यहां रामलीला का मंचन प्रारंभ हुआ था। 1927 से 1948 तक अपरिहार्य कारणों से रामलीला का मंचन नहीं हो सका। वर्ष 1949 में नगरवासियों ने पूना चौक बाजार से इसकी शुरुआत की और अगले ही साल से इसे नुमाइश खेत मैदान में स्थानांतरित कर दिया गया, जो अब तक लगातार आयोजित हो रही है।
रामलीला का जो इतिहास है वो यहाँ पर लगभग 1880 के दशक से यहाँ पर शुभारम्भ हुआ है और बीच में कतिपय कारण से कुछ वर्ष ये बंद रहा, लेकिन आज जब इसका शुभारम्भ हुआ तो चौक बाजार बागेश्वर में भरत मिलाप से इसका पूर्ण समारंभ किया गया। ये माना गया कि रामचंद्र जी वनवास गए थे तो वनवास के बाद राजाभिषेक करके बाद ही इसका शुभारम्भ यहाँ पर किया गया। तो इसका अपना बहुत लंबा इतिहास है रामलीला कमेटी बागेश्वर का।
देहरादून के एमकेपी पीजी कॉलेज में इन दिनों श्रीराम राष्ट्रीय कला उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। ये उत्सव न सिर्फ कला को मंच दे रहा है बल्कि युवा पीढ़ी को अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ने का भी काम कर रहा है। इस अवसर पर कॉलेज की चित्रकला विभागाध्यक्ष डॉ. ममता सिंह ने कहा कि उनके लिए ये बड़े गर्व का विषय है कि महाविद्यालय में इस राष्ट्रीय कला उत्सव का आयोजन हो रहा है। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति को युवाओं तक जाने और उन्हें अपनी संस्कृति के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से ये आयोजन किया गया है।
हमारे लिए बड़े गर्व का विषय है कि हमारे महाविद्यालय में श्री राम राष्ट्रीय कला उत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पहले दिन राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी का उद्घाटन हुआ, उसके बाद राष्ट्रीय संगोष्ठी और उसके बाद अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिसमें कथक नृत्य हुआ और श्री राम आराधना समूह गीत के माध्यम से की गई। तो इस प्रकार ये भारतीय संस्कृति को हमारे युवाओं के मध्य सम्मानित करने के लिए, संरक्षित करने की दिशा में उन्हें प्रेरित करने के लिए हमने ये कार्यक्रम आयोजित किया है।
राष्ट्रीय कला उत्सव में भाग लेने वाली छात्रा रागवी चौधरी का कहना है कि इस तरह के आयोजन से हम अपनी संस्कृति को आगे बढ़ा सकते हैं और दूसरों को भी प्रेरित कर सकते हैं।
अभी नवरात्रे चल रहे हैं और फिर लास्ट में हमारी रामनवमी आती है जिसे हम सेलिब्रेट करते हैं और उसके बाद हमारा दशहरा आता है, तो सब लोग दशहरा में जाते हैं बट ऐसी चीजों में पार्टिसिपेट करने से ऑलमोस्ट लोग बचते हैं। तो मैं उनसे यही कहूंगी कि वो लोग भी ऐसी चीजों में पार्टिसिपेट करें और अपनी संस्कृति को जानने में और इंटरेस्ट लें कि हमारी संस्कृति आखिर है क्या। अगर हम इन चीजों से अगर किसी को मोटिवेट कर सकते हैं तो हमें मोटिवेट करना चाहिए, चाहे वो कॉलेज हो या स्कूल हो या फिर कोई सा भी फील्ड हो, हमें इन चीजों से पीछे नहीं हटना चाहिए।
अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का लोगों से आह्वान, दैनिक जीवन में अधिक से अधिक स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करें। कृषि एवं ग्राम विकास मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून में सिल्क एक्सपो का शुभारंभ किया। हरिद्वार जिले की ग्राम पंचायत धनौरी में ग्रामोत्थान रीप परियोजना के तहत चारा उत्पादन को लेकर महिला पशुपालकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न और बागेश्वर के नुमाइश खेत मैदान में कुमाऊनी गायन शैली में आयोजित होने वाली रामलीला का इस बार नए अंदाज में मंचन हो रहा है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।